SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की यात्रा के बाद शुक्रवार को 10 घंटे की ट्रेन यात्रा कर यूक्रेन की राजधानी कीव का रुख किया, जहां वे राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले। यूक्रेन से 1992 में बतौर स्वतंत्र राष्ट्र कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई इस यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान दोनों देशों ने 4 महत्वपूर्ण पारस्परिक समझौतों, कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उत्पाद रेगुलेशन, यूक्रेन में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में भारतीय मानवीय अनुदान सहायता और 2024 से 2028 के लिए सांस्कृतिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
कुछ समय पहले समर्थन में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आप से आप मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया में मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे।
भारतीय मीडिया के साथ प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दो टूक शब्दों में यूक्रेन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यह युद्ध भारत सहित कुछ अन्य देशों द्वारा आयात किए जा रहे कच्चे तेल और गैस से मिल रहे पैसों की वजह से लड़ पा रहे हैं।
If we speak about global role, because you have global influence, very big country, very big population, that's why, and very big influence on Russian economy. Today you have it, and it's true. Because really a lot of export possibilities for Russia closed, but India is open. We spoke about it with Prime Minister. Of course, it helps today for Russian army. And I think that government of India, of course, understand it. That's the role of India if you will stop import the oil, Putin will have huge challenges.
साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि पारस्परिक समझौते दोनों देशों के बीच करीबी बढ़ाएंगे।
We have to have something very concrete and it's much more influential than any words. Yes, so that's why these 4 documents are the first step. Our common declaration, this also important, but we are very happy.
इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संयुक्त राज्य अमेरिका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके अमेरिका पहुंचने से पहले दोनों देशों ने 2 महत्वपूर्ण मसौदों, नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ लियाजा ऑफिसर्स पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, यह व्यवस्था दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। भारत इस व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका का 18वां भागीदार है। कूटनीतिक हलकों में इसे भारत के अमेरिका की ओर झुकाव के तौर पर देखा जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को न लागू करने के लिए देश भर में आलोचना झेल रही मोदी सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जो अगले वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होगी। सरकार का कहना है कि इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यूनाइटेड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक वैकल्पिक स्कीम होगी जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे विपक्ष के दबाव के कारण मोदी सरकार का यूटर्न बताया, जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे एक धोखा बताया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। दूसरी बात इसमें क्या है, अंतिम के 12 महीने जो हैं, उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनके 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है।
बहरहाल इस घोषणा को 4 राज्यों में नज़दीक आ रहे विधानसभा चुनावों में जीतने के लिए भाजपा के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने तो रविवार को ही सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस के विकल्प की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र में अक्टूबर माह तक विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने में नहीं आ रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी घोटाले में मुकदमा दायर करने की हरी झंडी दी, जिसके फौरन बाद सीबीआई ने विशेष अदालत को दलील पेश की, जहां मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त तय की गई है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सीबीआई का इस्तेमाल कर श्री केजरीवाल को जबरन जेल में रखने का षड्यंत्र कर रही है।
जब अरविंद केजरीवाल जी का ये मामला सीबीआई की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सीबीआई को 2 हफ्ते मिलते हैं उनको जवाब फाइल करने को दिया जाता है, तो कल कोर्ट में सीबीआई आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमें और समय चाहिए। ये अखबार इस बात को साबित कर देते हैं कि सीबीआई को समय नहीं चाहिए था। सीबीआई अपना एफिडेविट अखबार में दे सकती है, मीडिया को रिलीज कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकती, क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल को लंबे से लंबे समय तक जेल में रखना है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रविवार को सीबीआई कोलकाता की एंटी करप्शन विंग की 15 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। सीबीआई की टीम बेलेघाट में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर सुबह 6:45 पहुंची। ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या केस की छानबीन कर रही सीबीआई की टीम आरजी कर अस्पताल के फॉरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम के घर भी पहुंची। इसके अलावा कॉलेज के पूर्व सुपरिंटेंडेंट संजय वशिष्ठ और मेडिकल सप्लायर बिप्लव सिंह के यहां भी सीबीआई ने छापेमारी की। 6 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद सीबीआई ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वह मुख्य आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करा सकती है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।